लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में 26 जून से G7 यानी 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह के नेताओं की 3 दिवसीय सम्मेलन वार्ता शुरू हुई। G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में भाग लिया। 27 जून को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने G7 से यूक्रेन में रूस के विनाशकारी युद्ध पर सभी का ध्यान केंद्रित कराया, जो अब अपने 5वें महीने में प्रवेश कर चुका है और साल के अंत तक रूस के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह किया। G7 के सभी नेताओं ने सहमति व्यक्त की और कहा कि विनाशकारी युद्ध के बीच रूस के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाना जारी रखेंगे और उन्होंने यूक्रेन को 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समर्थन देने का वादा किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने सोमवार को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 2रे यूएन महासागर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समुद्रों की रक्षा व संरक्षण के लिए एकजुट होकर प्रतिबद्धता जताने का आह्वान किया। पुर्तगाल और केनिया द्वारा सह आयोजित 27 जून से 1 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान विश्व के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा हो रही है। यूएन महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए ध्यान दिलाया कि महासागर हम सभी को आपस में जोड़ते हैं और यह सम्मेलन वैश्विक संकल्प दर्शाने का एक अवसर है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
महासागर पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, जो जलवायु का नियामक होने के साथ साथ अरबों लोगों को भोजन व आजीविका का स्रोत प्रदान करता है, मगर उसका स्वास्थ्य खतरे में है। पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए महासागर की महत्ता के बारे में और ज्यादा जागरूकता फैलाने व ठोस कार्रवाई आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 27 जून से 1 जुलाई तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 2रा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ये एक ऐसा अहम अवसर है जहां मानव जनित गतिविधियों से समुद्री जीवन को हुई क्षति पर मरहम लगाने के उपाय अपनाए जाने पर सहमति बन सकती है। इस लिस्बन यूएन महासागर सम्मेलन में सदस्य देशों, गैर सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के अलावा उद्यमी भी हिस्सा लेंगे और आर्थिक प्रगति के लिए समुद्री संसाधनों का टिकाऊ इस्तेमाल यानी नील अर्थव्यवस्था विकसित करने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। यूएन महासचिव ने इस अवसर पर कहा है,
The ocean generates half the oxygen we need and absorbs a quarter of all carbon dioxide emissions. The ocean is the primary regulator of the global climate and provides billions of people with food and livelihoods.
महासचिव अंतोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि महासागर हमारी जरूरत की आधी ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 1/4 हिस्सा सोखता है। महासागर वैश्विक जलवायु का प्राथमिक नियामक है और अरबों लोगों को भोजन व आजीविका मुहैया कराता है। विज्ञान स्पष्ट है, हम मानव ही महासागर की समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, तो हमें ही समाधान भी तलाश करने होंगे। यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि लिस्बन में ये यूएन महासागर सम्मेलन कार्रवाई की एक पुकार है और एक टिकाऊ नील अर्थव्यवस्था के लिए संकल्प दिखाने का एक अवसर भी। इस सम्मेलन को महासागरों की देखरेख और उनका पोषण व संरक्षण सुनिश्चित करने के इरादे से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है।
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने देश में बीते सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप से बुरी तरह प्रभावित समुदाय का एक दिवसीय दौरा करने के बाद गुरुवार को सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को जानकारी देते हुए बताया कि विनाशकारी भूकंप देश में मौजूद आपात परिस्थितियों में से एक है, जिनसे निकलने के लिए तालिबान प्रशासन के साथ बातचीत जारी रखी जाए। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की गुहार लगाई। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों के राजदूतों ने अफगानिस्तान में 22 जून को आए भूकंप के पीड़ितों की स्मृति में एक मिनट का मौन रखा। इसके बाद देश में यूएन मिशन के विशेष उप प्रतिनिधि रमीज अलक बरूफ और मानवीय राहत मामलों के संयोजन कार्यालय के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने देश के हालात से अवगत कराया। उधर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने अफगानिस्तान में 22 जून को आए भीषण भूकंप से प्रभावित कम से कम दो प्रांतों पक्तिका और खोस्त में प्रभावित समुदायों को खाद्य व अन्य प्रकार की राहत पहुंचाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भूकंप प्रभावित समुदायों को आपात परिस्थितियों में आश्रय, खाद्य सहायता, स्वास्थ्य, पेयजल व साफ सफाई समेत अन्य प्रकार का समर्थन मुहैया कराना प्राथमिकता है। विशेष उप प्रतिनिधि रमीज अलक बरूफ ने कहा कि मौजूदा कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपसी संपर्क व संवाद जारी रखने की रणनीति ही आगे बढ़ने और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अफगानिस्तान में मानव अधिकारों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की।
यूनिसेफ ने कहा है कि संघर्ष प्रभावित 15 देशों अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, चाड, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, हैती, केन्या, मदागास्कर, माली, निजेर, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान और यमन में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 80 लाख बच्चों को अगर तत्काल पोषण समृद्ध भोजन व देखभाल उपलब्ध नहीं होते हैं, गंभीर कुपोषण से उनकी मौत होने का खतरा है और ये संख्या हर मिनट बढ़ रही है। यूनिसेफ ने इस स्थिति का सामना करने के लिए प्रभावित देशों में अपनी सहायता प्रयास तेज किए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि वैश्विक भूखमरी संकट हर एक मिनट एक बच्चे को गंभीर कुपोषण में धकेल रहा है, जिससे उन बच्चों के अस्तित्व के लिए जोखिम बढ़ रहा है। यूनिसेफ ने कहा है कि संघर्ष प्रभावित 15 देशों में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 80 लाख बच्चों को अगर तत्काल पोषण समृद्ध भोजन व देखभाल उपलब्ध नहीं होते हैं तो गंभीर कुपोषण से उनकी मौत होने का खतरा है और ये संख्या हर मिनट बढ़ रही है। यूनिसेफ ने इस स्थिति का सामना करने के लिए सर्वाधिक प्रभावित 15 देशों में अपने सहायता प्रयास तेज किए हैं, जिसके लिए $1.2 अरब की सहायता अपील जारी की गई है। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत से ही वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने अतिरिक्त 15 देशों में 2,60,000 बच्चों को गंभीर कुपोषण के दायरे में धकेल दिया है। ये बच्चे संकट के सबसे गंभीर असर का सामना कर रहे हैं।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। अंतरधार्मिक परामर्श संबंधी अंतर्राष्ट्रीय यहूदी समिति का अभिवादन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने पश्चिमी समाज में व्याप्त नकारात्मक प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए ख्रिस्तीय और यहूदी धर्मानुयायियों के एक साथ मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित किया। संत पापा की ओर से उनके प्रतिनिधि कार्डिनल कुर्ट कॉक द्वारा गुरुवार को उनका संदेश अंतरधार्मिक परामर्श संबंधी अंतर्राष्ट्रीय यहूदी समिति के समक्ष पढ़ा गया। संत पापा ने उक्त संदेश में कहा कि अंतरधार्मिक संवाद हमारे समय का एक संभावित संकेत है तथा यह एक भावी चिन्ह है, इस अर्थ में कि स्वयं ईश्वर ने अपनी प्रज्ञावान योजना में धार्मिक नेताओं और कई अन्य लोगों में अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं में अंतर के बावजूद एक दूसरे से मुलाकात करने और एक दूसरे को जानने की इच्छा को प्रेरित किया है। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कि यहूदी और ख्रिस्ती दोनों धर्मों के अनुयायियों से मांग की जाती है कि वे समस्त व्यक्तियों की देखभाल करने वाले प्रभु ईश्वर की दया और उनके न्याय की गवाही दें, संत पापा ने कहा कि यह निर्णायक है कि यहूदी और ख्रिस्तीय धर्मानुयायी आपसी वार्ताओं और परस्पर बातचीत हेतु एक साथ बारंबार मिलें तथा एक साथ मिलकर कार्य करें ताकि पश्चिमी समाज में व्याप्त नकारात्मक प्रवृत्तियों का मुकाबला किया जा सके। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्तीय और यहूदी दोनों धर्म हिंसा और घृणा को विश्वास के तथ्यों से असंगत मानते हैं। उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की कि हमारी धार्मिक परंपराएं हमें असहमति, मतभेदों और संघर्षों को टकराव के तरीके से नहीं बल्कि बिना पूर्वाग्रह के शांतिपूर्ण तरीकों से और सभी के लिए स्वीकार्य समझौतों को खोजने के उद्देश्य से संबोधित करने का आह्वान करती हैं। इस बात पर बल देते हुए कि दयावान और कृपालु ईश्वर के साथ हिंसा और घृणा तर्कहीन और असंगत है, संत पापा ने हर तरह की साम्यवाद विरोधी भावनाओं के विरोध हेतु कैथलिक कलीसिया की प्रतिबद्धता को नवीकृत किया। उन्होंने कहा कि अंतरधार्मिक संवाद हमारे विश्व में भाईचारे और शांति के विकास के लिए एक विशेष अधिकार प्राप्त मार्ग है जो हर प्रकार के अतिवाद और यहाँ तक कि धर्मांधता से भी निपटने में मदद कर सकता है। जीवन के ईश शास्त्रीय नैतिकता शीर्षक से 1 जुलाई को प्रकाशित हो रहे दस्तावेज के लक्ष्यों को समझाते हुए जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो पालिया ने वैटिकन मीडिया से कहा कि यह दस्तावेज धर्म शास्त्रीय परंपराओं और व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। वैटिकन प्रकाशन केंद्र द्वारा उक्त दस्तावेज का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी के तत्वाधान में संपादित अध्ययन शिविरों के सुझाव शामिल हैं। उक्त दस्तावेज के संपादक महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो पालिया ने वैटिकन मीडिया से बातचीत में कहा कि इस दस्तावेज का लक्ष्य लोगों में ईश शास्त्र पर व्याप्त भ्रांतिपूर्ण विचारों का खंडन करना है। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि संत पापा फ्रांसिस के ईश शास्त्र संबंधी विचारों को लोगों में स्पष्ट करना इसका लक्ष्य है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र एवांजेलिम गाउडियो, लाउदातो सी, अमोरिस लेतिसिया और वेरिटातिस गाउडियम मानव जाति के समक्ष ईश शास्त्र के नवीन क्षितिजों को खोल देते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि इन विश्व पत्रों में धर्म तत्व विज्ञान की ही बात नहीं की गई है अपितु लोगों के बीच वार्ताओं और विचारों के आदान प्रदान द्वारा समृद्धि प्राप्त करने का भी आग्रह किया गया है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि उक्त दस्तावेज मानव जीवन पर केंद्रित है, विशेषतः मानव जीवन की ईश शास्त्रीय नैतिकता पर, इसलिए कि जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी मानव केंद्रित विषयों के प्रति शुरू से ही जागरूक रही है तथा स्वास्थ्य देखभाल आदि मुद्दे उसके लिए विशेष रुचि के रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निरंतर वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार पर सामयिक चिंतन की जरूरत रहा करती है। उन्होंने स्मरण दिलाया कि 25 वर्षों पूर्व संत जॉन पॉल द्वितीय के विश्व पत्र एवांजेलियम वीते से जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी ने मानव केंद्रित यह यात्रा शुरू की थी। रोम स्थित यूक्रेन की ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के सचिवालय ने यूक्रेन पर आक्रमण के 127वें दिन एक वक्तव्य प्रकाशित कर विश्व का ध्यान यूक्रेन पर हो रहे रूसी अत्याचारों की ओर आकर्षित कराया है। वक्तव्य में कहा गया, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर और यूक्रेन के सशस्त्र बलों को धन्यवाद देते हैं कि हम आज सुबह तक जीवित रहे हैं और दिन की रोशनी देख रहे हैं। हम इस अवसर पर ईश्वर के मुखमंडल के समक्ष खड़े होने और ईश वचन में तल्लीन होने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वक्तव्य में स्मरण दिलाया गया कि पूरी फ्रंट लाइन पर भारी लड़ाई हो रही है। सैनिकों का सबसे तीव्र संघर्ष अभी भी लुहांस्क क्षेत्र में है, जो अब यूक्रेनी सेना के नियंत्रण में है। दुश्मन यूक्रेन के सभी हिस्सों पर निर्दयता से प्रहार कर रहा है। कार्किव, सूमी, चेर्निहाय क्षेत्रों में सीमावर्ती कस्बों सहित शहरों और गांवों पर गोलाबारी की जा रही है और कथित मिसाइल आतंकवाद जारी है। रूस रॉकेट यूक्रेन के कृषि, शहरी और राज्य के बुनियादी ढांचे को बेरहमी से नष्ट कर रहे हैं। कहा गया कि भारी आक्रमण के बावजूद यूक्रेन अटल खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है। हम घायल सैनिकों और प्रत्येक घायल व्यक्ति के लिए प्रार्थना का आह्वान करते हैं और सभी मृतकों की शांति हेतु ईश्वरीय करुणा की याचना करते हैं तथा संपूर्ण विश्व के लोगों से आग्रह करते हैं कि वे भी हमारी इन प्रार्थनाओं में हमारे समीप रहें। वक्तव्य में कहा गया कि ख्रिस्तीय अंतःकरण आज बुराई से लड़ने के लिए हमारा आह्वान कर रहा है। असम में गुवाहाटी के महाधर्माधीश जॉन मूलाचीरा ने असम के उत्तर पूर्वी राज्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता की अपील की है। पूर्वोत्तर राज्य के 28 जिलों में 30 लाख से अधिक लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उका समाचार से महाधर्माधीश मूलाचीरा ने कहा, हमें अपने महाधर्म प्रांत के धर्म समाजों और धर्म संघों से सहायता मिली है, लेकिन सभी संस्थानों और सामाजिक सेवा शाखाओं से हम अपील करते हैं कि वे आगे आएं और मदद करें, क्योंकि इस समय हम अनुदान की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी महाधर्म प्रांत के समस्त धर्म प्रांत राहत कार्य में संलग्न हैं, जिनमें अनेक कैथोलिक पुरोहित दिन रात घटनास्थलों पर सेवारत हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।